नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की दो दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने उनको शीर्ष अदालत के आदेशानुसार निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल भेजने पर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। कजाकिस्तान में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों से मध्य एशिया के सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायेव की सत्ता और मजबूत होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक संपन्न हो गई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की दो दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। सरकारी अधिकारियों ने श्री खान को शीर्ष अदालत के आदेशानुसार निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल भेजा है। श्री खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के कानूनी सलाहकार नईम पंजुदा के अनुसार याचिका में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, सूचना मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को सरकार को निर्देश दिया था कि श्री खान को ओडियाला जेल से इस्लामाबाद के निजी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दो दिनों के भीतर चिकित्सा जांच के लिए स्थानांतरित किया जाए। सरकारी अधिकारियों ने श्री खान को शुक्रवार की जांच के लिए सरकार के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS ले जाकर वापस जेल भेज दिया। श्री खान की बहन उज्मा खान ने पत्रकारों को बताया कि उनके भाई को जेल में प्रताड़ित किया गया है। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर एलिस जिल एडवर्ड्स ने श्री खान की हिरासत की स्थितियों और उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल नहीं मिलने की खबरों पर चिंता व्यक्त की थी। इस बीच पीटीआई नेताओं ने कहा है कि इससे 27 सितंबर को होने वाले नियोजित विरोध प्रदर्शन की तैयारियों को बल मिलेगा। बलूच यकजहती कमेटी BYC ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के खड़कुचा इलाके में पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की निंदा की है। इस हमले में 4 मजदूरों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। BYC ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। एक रिपोर्ट।
बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आरोप लगाया कि ये घटना सोराब में हुई। हवाई हमले के कुछ ही दिनों बाद ये घटना हुई है, जिसमें उसके अनुसार महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कमेटी ने आरोप लगाया कि ये घटनाएं बलूच समुदायों के खिलाफ हिंसा के व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं और अधिकारियों पर बलूच पहचान के कारण नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कमेटी ने इस दमन को चुनौती देने के एकमात्र तरीके के रूप में सामूहिक और राष्ट्रीय प्रतिरोध का आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र।
कजाकिस्तान में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों से मध्य एशिया के सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायेव की सत्ता और मजबूत होने की उम्मीद है। नए संविधान के अंतर्गत देश की संसद को 2 सदनों वाली व्यवस्था से बदलकर एकल सदन वाली व्यवस्था में कर दिया गया है। कजाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने कहा था कि नए संविधान के अंतर्गत वर्ष 2019 में पदभार संभालने वाले राष्ट्रपति टोकायेव 7 साल के एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। यह नई एकल सदस्यीय संसद के लिए पहला चुनाव है जिसे कुरिलताई के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति समर्थक आदलत पार्टी के भारी बहुमत से जीतने की उम्मीद है। कई विपक्षी दल भी चुनाव मैदान में हैं, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति टोकायेव का समर्थक माना जाता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल, ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मूज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। श्री ट्रंप ने यह तस्वीर 18 अगस्त को भी साझा की थी। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मूज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने हॉर्मूज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की ताजा धमकियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह चालबाजी है तथा उसके पास ईरान के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। एक रिपोर्ट।
ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के अनुसार श्री अराग्ची ने कहा कि आर्थिक दबाव बनाने के अमेरिका के प्रयास उसकी हताशा को दर्शाते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इकोनॉमिक डीडे अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि एक देश के खिलाफ यह बहुत भीषण आर्थिक अभियान होगा। उन्होंने सहयोगी देशों से भी ईरान को अलग थलग करने में साथ देने की अपील की। श्री ट्रंप ने कहा कि तेल तस्करी तंत्र, वित्तीय लेन देन, विनिमय केंद्र, पोत पंजीकरण और प्रमुख कंपनियों समेत ईरान के आर्थिक जीवन रेखा को निशाना बनाने के उपाय किए जाएंगे। इसी बीच ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को अमेरिका का सहयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल पड़ोसी देशों को शत्रु समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्रीय देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का सहयोग किया तो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते से तेल निर्यात को प्रभावित करने के उपाय किए जाएंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
और अब खेल खबरों के साथ है शक्ति सिंह।
महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और ईस्ट बंगाल FC ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को पहुंचे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने उनको शीर्ष अदालत के अनुसार निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल भेजने पर सरकार के खिलाफ अवमानना दायर की है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ।